शांति। आज से 365 दिन पहले, केवल 365 दिन पहले दादी जी हमारे बीच में यहां थी। कोई बहुत समय नहीं हुआ है तो दादी जी का आज हम यहां इकट्ठे हुए हैं। एक वर्ष उनका हमको साकार में छोड़कर जाने का दिवस मनाने के लिए। कितना भाई बहनों में दादी जी का प्यार है वो आप इस सभा से ही देख सकते हैं, और ना सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों के सभी कॉन्टिनेंट से भी हमारे बहन भाई प्रतिनिधि के तौर पे आए हैं। अगर सचमुच सबको खुली छुट्टी दी जाती भारत के भाई बहनों को, तो शायद माउंट आबू तक भीड़ हो जाती। लेकिन हर सेंटरों पर भी हमारे स्नेही सहयोगियों को ये दिवस मनाना है, इसलिए हमारे भाई बहन कई अपने दिल को थाम कर भी वहां रुके हुए हैं। आप देखेंगे, कभी आपने सुबह के वक्त आसमान की तरफ देखा हो तो बाबा कहता है मैं हूं ज्ञान सूर्य शिव बाबा, और ब्रह्मा माँ है चंद्रमा। लेकिन उसके साथ सुबह के वक्त एक मॉर्निंग स्टार होता है। कभी आप देखेंगे आकाश की ओर सवेरे तो एक खास चमकता हुआ सितारा होता है, जिसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। इतना ब्रिलियंट होता है, चांद के पास ही होता है वो। तो मैं जब भी उसको देखता हूं मुझे दादी जी याद आती है कि देखो बाबा कहता है सारे लकी सितारे हैं, लकी सितारों में भी वह सितारा जो अपनी तरह का एक ही रहा वो हमारी दादी जी। आप भी कभी सवेरे के वक्त आकाश में देखें तो आपको वो चमकता हुआ सितारा यादगार के रूप में मिलेगा। हम सब यहां इस हॉल में इकट्ठे हुए तो दादी जी के प्रकाश स्तंभ को देखते हुए इकट्ठे हुए हैं, जिसका विधिवत तो कल होगा, जिसको डेडिकेट किया जाएगा। लेकिन उस प्रकाश स्तंभ को देखकर भी क्या याद आता है कि जैसे हमारे सबके भक्ति मार्ग में यादगार हैं, और वो यादगार इसीलिए हैं कि पता रहे कि एक ऐसी देवी देवताओं की सभ्यता थी जो सबसे श्रेष्ठ थी, और जिसको देखकर आज भी भगत जन शांति पाते हैं, संतोष पाते हैं, अपनी मुराद पूरी करते हैं। तो संगम पर हम देहधारी यादगार तो नहीं मनाते, लेकिन इस स्तंभ के रूप में वो यादगार कायम किया गया है, ताकि जिसको देखते ही आसपास से गुजरते ही हमें दादी जी की वो सारे गुण, वो सारी शक्तियां और वो सारी विशेषताएं सदा याद आती रहे। क्योंकि जब भी यहां आएंगे तो ये प्रकाश स्तंभ हमें दिखाई देगा। आप देखिए कि ब्रह्मा बाबा में तो भगवान आते थे, हमारे यज्ञ की स्थापना शिव बाबा ने की है, तो उनका और पाठ था। परमात्म शक्ति से बीज ने जड़ को लगाया, लेकिन उसका जो फैलावट किया वो एक ऐसी आत्मा, आप सोचो कि कहते हैं कि परमात्मा ने कई आत्माओं को अपनी छवि में बनाया है, हम सभी ब्राह्मणों को बनाया है, लेकिन उसका जो बेस्ट सैंपल और एग्जाम्पल है जिसको देखकर हर एक आत्मा को पता लगता है कि सचमुच बाबा क्या चाहते हैं, कैसे उन्होंने सेवा, असली सेवा, सच्ची सेवा की, कैसे वो विस्तार को पाई। तो सेवा ही त्याग और तपस्या का सबूत है। तो बाबा कहते हैं सपूत बच्चा सबूत देता है। तो हम सब जानते हैं कि 1969 18 जनवरी से लेकर और 25 अगस्त 2007 तक इतना बड़ा विस्तार यज्ञ का किसने किया, निमित्त कौन बना। शुरू में तो केवल पांडव भवन माउंट आबू था और हिस्ट्री हॉल में बाबा की बॉडी 1969 18 जनवरी को रखी गई थी। उस समय ओम शांति भवन भी नहीं था। कैसे दादी जी ने अक्रॉस द रोड ओम शांति भवन बनवाया, जहां से हमारी इंटरनेशनल छवि उभरी और हमारी कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3, विदेशी लोग आए। मुझे याद है कि जब वो भवन तैयार हो रहा था तो एक एक को हाथ से पकड़कर दादी जी ले जाती थी, कोई आए ये देखो ऐसा है, जैसे कि ये सबके बाप का घर है, और हरेक को बता बता के इतना वो हरेक खुश होता था, अपनेपन की फीलिंग आती थी कि ऐसा नहीं कि ये ओम शांति भवन ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है, बल्कि मेरा घर, मेरा ये सेवा स्थान तैयार हो रहा है। तो ये भी किसी में विशेषता होती है जो अपनेपन की फीलिंग दिलवाए। तो आप देखेंगे हम जितने भी ब्राह्मण हैं, कभी कोई ऊंची हस्ती के पास जाता है, गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास जाओ या किसी जगह भी जिसको बड़ा गिनते हैं, तो कुछ उसके सिस्टम, कुछ उसके नियम होते हैं, पहले इससे पूछो फिर उससे पूछो, समय निर्धारित करो। दादी जी का ऐसा नहीं था, ना कभी उन्होंने किसी को जल्दी से कहा कि तू अब चले जा, हो गया तेरा, बातचीत पूरी हो गई, ना। हमेशा व्यक्ति अपने आप फुलफिल्ड होकर खुद समझता था कि अब मेरी मुलाकात पूरी हो गई। तो ये भी एक आर्ट है, और किसी को पता नहीं लगता था। दादी किसी को हरिडली ट्रीट नहीं करती थी, हर एक के लिए उनका गेट खुला था। और यही कारण है कि आज भी हम लोग, अभी दादी जी दादी कॉटेज में नहीं है, परंतु हम लोग आज भी हमारे पांव ऑटोमेटिकली दादी कॉटेज की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए कि वहां वो आत्मा रही है जिसने, जिसका दिल भी खुला, जिसका द्वार भी खुला हर वक्त और हर एक के लिए। और दादी जी का ट्रेडमार्क शायद आपने वीडियो देखा है या देखेंगे, यहां लास्ट कई मंथ्स में दादी जी जब आती थी, मुरली के अंत के समय आती थी और थोड़ी सी मुरली पढ़ती थी, तो उसके बाद गीत बजता था आंखों में तेरी जलवे, और दादी हरेक को ऐसे, जैसे हरेक को सीने से लगा रहे। तो ये है प्यार कि सारा समेटा हुआ है। तो ओम शांति भवन के बाद ज्ञान सरोवर बना, ज्ञान सरोवर के बाद इसको कहते हैं दूरदर्शिता, और समय के अनुसार उस चीज को एंटिसिपेट करके बनाना। फिर दादी जी की नजर पड़ी यहां और उन्होंने टेंट लगवा के, एक सीजन में बड़ा टेंट लगवा के, जहां हम बैठे हैं ये डायमंड हॉल, टेंट लगवा के ये बनवाया और कि भी ट्रायल करो। और उसके बीच में आंधी तूफान आया, टेंट थोड़ा हिला भी, हमेशा होता ही है, परंतु एक जगह जैसे निश्चित हो गई। और फिर दादी जी अंत तक हमेशा जब भी बोलते थे शाही, बाबा का शाही डायमंड हॉल। आज हम यहां बैठे हैं इकट्ठे होकर, तो उस दादी जी की पारदर्शिता के कारण बैठे हैं। उन्होंने सोचकर ये इतना बड़ा हॉल हम बच्चों के लिए बनवाया। तो इसी प्रकार से कभी किसी को ये फील नहीं होता था कि दादी को स्पेशल पुरुषार्थ करती है। वो हमेशा अपने ऊपर अटेंशन रखती थी, लेकिन दूसरे के अनुसार, जैसे माँ बाप छोटे बच्चे को झुककर उठाते हैं, इसी प्रकार दूसरे के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करती थी। हमने कभी देखा है कि कोई भी दादी भोजन पर बैठी होंगी तो भी हम चले जाते थे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि दादी भोजन कर रही है तो आपको बाहर बैठे रहना है। तो पहले कहेंगे आओ भोजन किया है, अच्छा। फिर कभी कभी हम जब उनके साथ भोजन करते थे तो जो लास्ट व्यक्ति, क्योंकि कई तेज करते हैं कई स्लो करते हैं, तो जो लास्ट व्यक्ति जब तक भोजन पूरा ना कर ले तो दादी धीरे धीरे वहां बैठी रहती थी, नहीं तो उठ के जा सकती है कि मैं तो बहुत बिजी हूं अब तुम पूरा खा लो ना। इसको कहते हैं रिस्पेक्ट, दूसरे को ये फील हो, इंटरनल रिस्पेक्ट, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो इसीलिए ऐसी ऐसी बातें, और जैसे समझो आज की मुरली है सरलता की, तो अगर सरलता का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना हो, जिसने अपने लिए कभी भी इतने साधन होते हुए इतना स्टेटस होते हुए कभी अपने लिए कोई एक्स्ट्रा चीज स्वीकार की हो ना, और सारा टाइम बाबा बाबा की सेवा, आप सोचो भगवान के कार्य को जो कि बिल्कुल नया है और जिसको सारी दुनिया को पता ही नहीं है, और वहां भारत जैसे देश में जहां के साधु महात्मा बड़े मंडलेश्वर जो और तरह की मत मतांतर के हैं, उस स्थान पर भगवान के कार्य को, जबकि ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा आते थे, नहीं अकेले उसके बल भरोसे पर निमित्त बन के उस कार्य को बढ़ाना, उसको फैलाना, और यहां तक कि उन्हीं महामंडलेश्वरों को जो एक दिन कहा करते थे ब्रह्मा कुमारियां क्या हैं, ये तो शास्त्रों को ही नहीं मानती, ये तो संस्कृति नहीं जानती, खुद आके सारे के सारे महामंडलेश्वर समय प्रति समय कहने लग गए कि आप तो चैतन्य गंगा हो, असली आप हो। तो कैसे हो गया? तो अंदर से स्नेह, किसी से घृणा नहीं कि वो महात्मा है हमारे ज्ञान को नहीं मानता इसलिए वो कोई दूसरा, नहीं। तो इस प्रकार से सहज नेचुरल नेचर से दादी जी ने इस यज्ञ को आगे बढ़ाया। हमारा संपर्क दादी जी के साथ बहुत पुराना है, 1955 में जबकि लौकिक हमारे पिताजी के घर में दिल्ली का दूसरा सेंटर खुला था, उस समय सेंटर अलग बिल्डिंगों में नहीं होते थे, तो उसमें दादी जी एज ए टीचर रही हैं। अच्छा, जैसे सेंटर टीचर होती हैं, और हमें बड़ा सौभाग्य मिला है कि दादी जी के क्लास भी करना, उसी किचन में भोजन करना जहां दादी जी करते हैं कॉमन था। और उस समय मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इम्तिहान देने के लिए था, तो मुझे पता था कि इम्तिहान बड़ा डिफिकल्ट है, उस समय 7% रिजल्ट होता था, तो मैंने मन में धार लिया कि जो पढ़ा सो पढ़ा, लेकिन पेपर देने जाने से पहले कॉन्सेंट्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एकाग्रता। तो मेरे में तो जितनी है उतनी है, लेकिन दादी जी से मैं अगर दृष्टि लेके जाऊंगा तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हो जाएगी और वह मेरे को मदद करेगी पेपर करने में। तो डेली मैं दादी जी से दृष्टि लेकर फिर पेपर करने जाता था, और उम्मीद नहीं थी मुझे, क्योंकि बीके लोग आप जानते हैं ये दुनिया की पढ़ाई वढ़ाई में फिर इतना जोरदार इंटरेस्ट नहीं ले पाते, फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं पास हो गया। तो मैं उसका जो जितना मुझे अंदर से पता है, इसमें दादी जी का बहुत बड़ा मेरे को मदद रहा, क्योंकि उनकी शक्ति मैंने अपने अंदर धारण करके कॉन्सेंट्रेशन के, उस वक्त जो भी फैला हुआ बुद्धि में पढ़ाई है उसको ठीक तरह सोचकर कौन सा क्वेश्चन करना है, उसने मुझे बहुत मदद किया। इसी प्रकार से दूसरा हमारा सौभाग्य क्या है कि 1981 में दादी जी जो है पांडव भवन में जो ऊपर है मेडिटेशन हॉल, वहां विदाई ले रही थी अफ्रीका जाने के लिए। 1981 अक्टूबर में दादी जी को अफ्रीका जाना था, नैरोबी वगैरह कीनिया में, जहां कोई ओरिजिन ऑफ पीस कॉन्फ्रेंस था। तो विदाई लेकर दादी निकली तो मैं उनके पास से खड़ा था, तो बोले कि तुमने कभी हवाई जहाज में चढ़ा है? मैंने कहा दादी मैंने तो कभी नहीं चढ़ा है। अच्छा, तो तुम अफ्रीका चलोगे? मैंने कहा जैसा आप कहो। अच्छा, तो उन्होंने मेरा प्रोग्राम अफ्रीका जाने का बना दिया, और आपको हैरानी होगी मुझे एयरपोर्ट में ट्रॉली पकड़ना भी नहीं आता था, दादी ने मुझे सिखाया ऐसे सामान रखते हैं। अच्छा, अफ्रीका में मेरा सौभाग्य रहा कि वहां पर नैरोबी में, मासा में, किसुमू में, जहां जहां था दादी का ट्रांसलेशन मैं करता था। अच्छा, बड़ा सौभाग्य रहा, हालांकि वहां पर इंग्लिश नोइंग सिस्टर्स वेस्टर्न स्टाइल की हैं, तो मुझे उसमें बड़ा खुशी प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से जितने कॉन्टिनेंट्स में, मान लीजिए यूएसए में जाना है, तो पहला मेरा यूएसए में जाना भी दादी जी के साथ ही हुआ। उस वक्त एनजीओ का यूएन में कॉन्फ्रेंस था जिसमें दादी जी को जाना था, तो मैं उनके साथ गया और लंदन में जानकी दादी भी उनके साथ शामिल हो गई। और जानकी दादी जी के पास यूएसए के लिए 80 किलो टोली थी, क्योंकि वो तो हमेशा अपने टोली के हिसाब से चलती हैं। तो जब हम न्यूयॉर्क में उतरे एयरपोर्ट पर, तो एक पोर्टर किया, नॉर्मली तो हम लोग अपना सामान उठा लेते, 80 किलो टोली थी, सामान था, तो पोर्टर ने देखा कि बहनें सफेद वस्त्र धारी हैं, तो उसने मुझे सोचा क्रिश्चियन सिस्टर होंगी, तो उनसे तो बात नहीं कर सकता था, पर उसका दिल में हो रहा था कुछ बोलूं, तो मेरे पास आके कहता है, सिस्टर्स? मैंने कहा यस। फिर मुझे कहता है, यू फादर? तो मैंने कहा नो, आई ग्रैंड फादर। हाँ, अच्छा, ताकि वो बेचारा खुश हो जाए। अच्छा, क्योंकि हमको क्रिश्चियन फादर तो थे नहीं। अच्छा, इसी प्रकार से फिर एक बारी ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ, तो वो भी हम दादी जी के साथ गए। मुझे अच्छी तरह याद है, वहां कोई रिट्रीट था पहाड़ी पर, और वहां एक भाई गुम हो गया, तो वहां पर बड़े बड़े सिस्टम होते हैं, हेलीकॉप्टर्स के उसको ढूंढा जाता है, पुलिस आती है, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो ये सभी तीनों कॉन्टिनेंट में मेरा दादी जी के साथ जाना हुआ, उससे बहुत ज्यादा लर्निंग होती है व्यक्ति को, कि कैसे दूसरी कल्चर में जाके एक साधारण सिंपल आत्मा कैसे अपना रूहानी प्रभाव डालती है। मैंने उनका यूएन में लेक्चर सुना, एक वहां पर बहुत बड़ा हॉल है, वहां सुना। ट्रांसलेट तो और बहने करती थी, लेकिन एक स्पिरिचुअल डिग्निटी, गॉडली डिग्निटी को धारण किए हुए एक आत्मा बाहर के प्रभाव से प्रभावित नहीं, बल्कि वहां पर अपना प्रभाव डाल रही है, ये हमने देखा। इसी प्रकार से मुझे याद है कि एक बार जब हम जॉब करते थे, तो आपको पता, जो व्यक्ति, बहुत साल की बात है, थोड़ा सा उसमें ईगो होता है कि मैं अफसर हूं। अच्छा, अफसर तो मैं था, तो क्या हुआ कि शांति स्तंभ के इर्द गिर्द जो बैठने की जगह बनी हुई है, वहां भाई बहन बैठे थे, और दादी जी को कहीं विदेश जाना था, उनसे विदाई ले रही थी, मिलना था, और शांति स्तंभ के बाहर मैं भी आया, लौकिक ड्रेस में था, तो मुझे उन्होंने टोली की थाली दी कि पकड़ लो और टोली बांटनी है। तो मेरे अंदर ही गुप्त में थोड़ा सा ईगो आया, बहुत साल की बात है, कि मैं टोली बांटू है, कोई और पकड़ ले टोली की थाली, है अफसर हूं मैं। अच्छा, अंदर ही अंदर आया, हुआ कुछ नहीं। तो अभी ऐसे ही हुआ था, तो मेरा ख्याल 6-7 सेकंड हुए होंगे, ये मेरे मन में चल रहा था, अचानक मुझे बहुत जोर से झटका लगा, जैसे होता ना बिजली का करंट, आज तक मैं नहीं भूलता, बकायदा तौर पे बहुत जोर से झटका लगा, और मैंने थाली ऐसे पकड़ ली जैसे कोई पपेट पकड़ता है कठपुतली, और मैं थाली पकड़ के दादी जी के साथ साथ, लोग दृष्टि लेते रहे सब, मैं गया। और उसके बाद मैंने देखा, अरे मुझे इतनी खुशी, इतनी ब्लिस, इतनी फीलिंग अच्छी अच्छी आई, मैंने कहा अगर मैं ये ना चांस लेता, मुझे पता ही नहीं लगना था कि इसमें कितना आनंद समाया हुआ है, कितना ब्लिस मिलता है। तो तब से मैंने ये ईगो वीगो छोड़ा कि ये चीजें संसारिक हैं, यहां पर तो जो जरा सा भी कुछ करता है उसको उसकी प्राप्ति तुरंत हो जाती है। अच्छा, इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी बातें हैं हमने जिनको दादी जी से सीखा है, और लास्ट के दिनों में भी दादी जी, जब वो उनका बॉडी ठीक नहीं था, तो हम हॉस्पिटल में जाते थे, बॉम्बे में भी गए, अहमदाबाद में भी गए, यहां भी, तो हम उनको देखते थे कि हमारे अभी ज्ञान में इतने साल होने के बाद भी हमारी ऐसी अवस्था नहीं है कि यहां बैठी हैं, देख रही हैं, बात कर रही हैं, और यहां उनके वो काट के दूसरी नालियां डाल रहे हैं, वो नालियां निकाल रहे हैं दादी, बिल्कुल जैसे कि किसी को शारीरिक फीलिंग से मुक्त हो। और डॉक्टर थे एक वहां जैन, जो कि वहां आईसीयू के स्पेशलिस्ट एनेस्थीसिस थे। तो उन्होंने दादी जी से पूछा, दादी आप कैसी हैं? तो कहते आई एम ओके। तो उसने, डॉक्टर था वो देख रहा है इतनी सारी इकट्ठी नालियां लगी हुई हैं, यहां लगी हुई हैं, हम भी देख रहे हैं, आईसीयू में ही पड़ी हैं। फिर उसने कहा, दादी आप कैसी हैं? कहती आई एम ओके। तो उसने कहा, दादी आप ओके कह रही हैं? तो बोली कि आप क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हो, आप पूछो आप कैसी हैं, मैं तो आत्मा हूं, अगर पूछो आपका शरीर कैसा है तो मैं कुछ बताऊं। हैं, वो डॉक्टर उसको रिपीट करता था। अब देखो कि जो व्यक्ति इस ऐसी स्थिति में स्थित होगा तो क्या उसका कहना है। इस वास्ते, और हम तो अखबार छापते हैं और यहां भी बाहर आप देख सकते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर दादी जी के फोटो। दुनिया में मेरे ख्याल में ऐसा कोई नेता, चाहे वो धार्मिक नेता हो चाहे राजनेता हो, कोई ऐसा नहीं है जो इतनी वर्ल्ड में घूमकर, इंडिया की बात छोड़ो, और इतने लोगों से मिला हो, इतने वैरायटी के लोगों से मिला हो और जहां जाके ईश्वरी छाप डाली हो। ये दादी जी ही करती है। ओम शांति।